अब अगली आयत, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आप और मैं हर एक इस एक आयत की रोशनी में खुद से एक सवाल लिखे पहले, क्योंकि सहाबा को बुनियाद बनाकर हमारी तरबियत हो रही है। असल में ये आयतें सहाबा के उसी अमल के लिए हैं जो मैदान उहद में हुए हैं, और मुझे लगता है गज़वा उहद एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स है। सहाबा गलती खा गए, कुछ वक्ती तौर पे पीछे हो गए, कुछ ने कुछ किया। आयत सुनिएगा, अल्लाह ये नहीं कह रहे तुम ऐसे और वो वैसे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को और आज मुझे और आपको ये बताया जा रहा है कि नबियों का साथ देने वाले कैसे होते हैं, किन किन खूबियों के मालिक होते हैं। इस आयत को पढ़ें, इसके अंदर बहुत खजाने भरे हुए हैं। आयत तो छोटी सी है लेकिन बातें इसमें बहुत बड़ी हैं। खुलासा करती हूँ, आयत 146, वकाई मिन नबीयिन, और कितने ही गुजर गए नबी, कातला के लड़ाई की, माहू उसके साथ, रिब्बीयूना कसीर बहुत सारे अल्लाह वालों ने। अगर एक स्ट्रेच में करूं तो इसका क्या मतलब बनेगा, कितने ही नबी ऐसे गुजरे कि जिनके साथ होकर बहुत सारे अल्लाह वालों ने जंग की। यानी ए मुसलमानों, जो वाकया भी पेश आया है ये पहला तो नहीं है, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पे तुम अकेले या आज पहली दफा तो नहीं निकले ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये सारे वक्त आए। वक्त के साथ अल्लाह को चाहने वाले, मानने वाले, वो अपने अपने वक्त के नबी के साथ निकले। यहाँ जो लफ्ज आया ना, जरा उसको देखिए, कायन पहला लफ्ज देखिए, वाकन कायन कहते हैं हाउ मैनी, जैसे हम कहते हैं ना हाउ कम, कितने ही के मानों में। ज्यादातर तादाद में जब शक होता है ना तब इस्तेमाल होता है और कसरत जाहिर करता है। मुराद इसका क्या, बहुत दफा ऐसा हुआ, ये मुराद है। मिन नबीयिन तो हो गया, कातला हो गया, रिब्बीयून क्या है, रिब्बी और रिब्बाई आज भी यहूद के यहां इस्तेमाल होता है मजहबी रहनुमाओं के लिए। तो रब्बा होता है नशो नुमा पाना, रा पे जबर हम पढ़ चुके हैं लफ्ज रब में, यहां रिब्बी है। तो रिब्बी किसको कहते हैं, कहां क्या है, इसकी तफसील आप चले साथ साथ ही देख लेते हैं। कितने ही नबी ऐसे थे जिनके साथ ये सब हुआ, उनके साथ कितने ही अल्लाह वालों ने बात की। सवाल पैदा होता है कि रिब्बी कौन होते हैं, लिखिएगा रिब्बी रिब्बियून का वाहिद है अल्लाह वाला। इससे मुराद है उलमा, सुलहा, मुत्तकी और इबादत गुजार, यानी अपने दौर के बेहतरीन लोग। इसी तरह रिब्बी कहते हैं उस शख्स को जो सिर्फ तालीम ही ना दे तरबियत भी करे, यानी इल्म दे देना तो किताब से भी मिल जाएगा और कैसेट से भी मिल जाएगी, और किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे आपको इल्म तो बहुत सा मिलेगा, लेकिन रिब्बी तरबियत करने वाला मुराद क्या है, अल्लाह के लिए निकलने वाला, अल्लाह से जोड़ने वाला, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक और दूसरों का ताल्लुक जोड़ने वाला। खैर आगे भी देख लेते हैं। फमा वहनु, पहली चीज ये अब स्टेप्स हैं इसको समझिएगा। फमा वहनु तो बस सुस्त नहीं हुए, लिमा सा बहुम फी सबीलिल्लाह, उन मुसीबतों पर जो उनको अल्लाह के रास्ते में आई। यानी अल्लाह के नबियों की ये साथियों की खूबियों में क्या खूबी थी, पहली बात है कि अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें उन पर आईं इस पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, लिखिएगा जब हम अल्लाह के रास्तों में निकलें सब कुछ हमारी मर्जी से चलता जाए, कोई घर से रुकावट नहीं, जहां जाके काम करते हैं वहां कोई रुकावट नहीं, हर चीज हमारी मर्जी की है, बड़ा खतरा होता है इसमें। समझ ही नहीं आता कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं या अपनी नफ्स के लिए कर रहे हैं। जरा सी मुश्किल पड़ी, घर से पाबंदी लग गई, बीमारी आ गई, बच्चा बीमार हो गया, या फिर जहां काम करते थे उन्होंने आप पे तनकीद कर दी, कोई वजह भी हो सकती है। अभी मैं आपको चंद अकवाल पढ़ के सुनाऊंगी, आपको ये लफ्ज समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब कह लीजिए कोई एडवर्स कंडीशन हो गई, गाड़ी सही चलते चलते एकदम झटके खाने लग गई, लेकिन वो सुस्त नहीं पड़े। तो पहली खूबी, जिंदगी की मुश्किलात या दीन के रास्ते में जो तकलीफें आए उस पर वहन नहीं आएगा, और वहन का लफ्ज आप सुन चुके हैं कई दफा, पीछे भी गुजरा, अभी मैंने पिछले दो सबक से पहले भी कहा था कि यहां इसकी डिटेल आएगी, तो ये वो मौका आ गया। वहन कहते हैं सुस्त होने को। हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मरने से खौफ आना। इरादे की कमजोरी को भी कहते हैं, जिस्मानी कमजोरी को भी कहते हैं, यानी जब वो किसी काम में लगे होते हैं तो फिर मुश्किलात की वजह से उनके कदम सुस्त नहीं होते। फिर वमा दाऊफू, दूसरा, इसके अंदर एरो लगा ले तो आपको इंशाल्लाह इनके स्टेप समझ आएंगे। दूसरी चीज है जोफ नहीं आया, कमजोरी नहीं हुई। पहली चीज क्या थी, सुस्ती नहीं आई। दूसरी बात है जोफ नहीं आया और ज़ईफ़ लफ्ज़। पीछे मैंने आपको बताया था कि तीन तरह ये पढ़ा जाता है, दुआद की जबर दाफ दुगने के मानों में, दुआद की पेश के साथ दोफ दाफुन कमजोरी के मानों में। तो यहां कमजोरी मुराद है। व मस्तकानु, और ना ही वो डगमगाए या बातिल के आगे सर नगू नहीं हुए। ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो कि वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। कौन है सब्र वाले? जो जाती मुश्किलात के वजह से हिम्मत नहीं हारते, कमजोरी नहीं दिखाते और साथ ही साथ वो बातिल के आगे झुकते नहीं है। चौथी खूबी इनकी अगली आयतों में, उसको पढ़ के इन पे इकट्ठी बात करेंगे। आयत 147, वमा काना कौलहुम, और इनकी दुआ या इनकी बात इसके सिवा कोई और होती नहीं थी, यानी ये अपनी तारीफें नहीं करते थे, खुद को सराहते नहीं रहते थे या खुद को मजबूर नहीं कहते थे। इनकी बातें उजर पेश करने और बहानों की नहीं होती थी, बल्कि इनकी जुबान पर एक ही बात होती थी कि रब्बना फिर लना जुनूबना, ए हमारे रब बख्श दे हमको हमारे गुनाह। ये जो जुनूब जंब, और जंब कहते हैं टेल को, दुम, जानवर की जो दुम होती है ना, इसी तरह गुनाहों की दुमें हमें लगी हुई है, बड़े गुनाहों को कहते हैं जुनूब। और इसराफ है ना, ज्यादतियां, शॉर्टकमिंग्स भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा चीजें करना, कि अल्लाह करते तो तेरे रस्ते के काम है, फिर भी हमसे जुनूब भी होते हैं और इसराफ भी होता है, कमी बेशियां भी होती हैं, हमारी वजह से कई नुकसान हो जाते होंगे, किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती होगी, हमारी वजह से कितनों को कसर लग जाती होगी, कानो कान खबर ही नहीं होती, सिर्फ रब तुझे पता है। यानी अल्लाह के रास्तों में काम करते हुए डरे फख्र करने की बजाय, कि अल्लाह मेरे से हक अदा नहीं हो रहा। देखिए पीछे भी बात हुई थी, यहां भी इस बात को समझ लीजिएगा, वहन से बात शुरू होती है। ये शैतान के प्रोपेगंडे होते हैं, सबसे पहले दीन का काम करने वाले को मायूस करता है। आप अपने ऊपर लें, छोड़ दें बड़े बड़े लोगों को काम करते हुए, आप कुरान पढ़ने आ रहे हैं ना, अभी आपको आते हुए कितने महीने हुए, अपने ऊपर लें, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अब नबियों के साथियों वाली खूबियां अपने में लाने वाले हैं। जो कुरान सीखने का सफर शुरू करता है ना, बस समझ ले कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा के नक्शे कदम पे चल पड़ा, उसकी जिंदगी का रास्ता एक नया मुतय्यन हो गया, जो दूसरों का होगा कि नहीं होगा ये अल्लाह को पता। लेकिन ये बात हकीकत है कि आप जब इस काम में आएंगे, सबसे पहले तकलीफें पहुंचेंगी, बर्फ आएगी आगे से, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपने सुस्त नहीं होना। वहन सुस्ती, कमजोरी, हिम्मत हारना। एक दफा हिम्मत हार दे, आप देखेंगे कि उसके बाद दोबारा हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल बात है। ये तो सर डाल के चलते ही जाएं। सबसे पहले वहन आता है, फिर दौफ आता है, फिर इस्तकानत आती है। जो बंदा शैतान के पहले हमले पे अलर्ट हो जाए, खुद को थाम ले, अल्लाह ताला फिर उसको दूसरे और तीसरे पे नहीं आने देता। लेकिन सच्चे दिल वाले मुखलिसीन के अंदर भी ये सारी कमियां आती हैं। शैतान ने ना, पीछे आपने पढ़ा, बनू सलमा और बनू हारिसा को कमजोर कर दिया। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई नहीं रहा, 300 लोग चले गए, फिर हम भी चले जाते हैं, अल्लाह अकबर, चले जाओ, लेकिन अल्लाह ने थाम लिया। ये बात लिख लीजिए, आपके दिल में इखलास है तो अल्लाह आपको जाने नहीं देगा, लेकिन जाते जाते पता भी नहीं लगता। शैतान हमें मायूस करता है। मसलन देखिए, मैं इधर आती हूँ ना, मैं आपको मिसाल दूँ, अपनी ही लेनी चाहिए, दूसरों की क्या लें। मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का कुरान आपको इस तरह समझा दूँ कि आपको अपनी अमली जिंदगी की रहनुमाई मिल जाए। आप में से किसी के घर वाले से मुझे कोई मैसेज मिल जाता है कि जी ये आपके पास आते तो हैं, अमल कोई नहीं करते, आपको पता ये घर में आके क्या करती हैं, ये हैं वो है, मिसाल दे दूँ, यानी मुझे आप लोगों की कोई नेगेटिव रिपोर्ट मिले तो मैं क्या करूं, फायदा तो होता कोई नहीं है, बदलना तो इन्होंने है कोई नहीं, निरी बेइज्जती मैं कोई नहीं पढ़ा रही, ये बहाना है, समझ गए? यानी नेगेटिव प्रोपेगंडा सुनकर मैं आपसे बददिल हो गई, ये बददिली होती, ये फमा बहन हुआ है। सबसे पहले शैतान हमें ये कहता है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें करना नहीं आता, तुम ठीक नहीं कर रही, बल्कि तुम नुकसान कर रही हो, तुम्हारे से अच्छा कोई और कर सकता है। ये पहली बात है। देखिए पीछे भी आपसे मैंने इस बारे में बात की थी सूरह बकरा में भी, कि शैतान हमें ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून के रास्ते से डसता है। उसको पता है कि अब ये काम कर रहा है, अब इसने मुतमईन होके कब करना है, जब इसको इसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो मायूस करता है। बस दफा अच्छे भले काम करने वाले को शैतान कहता है, तुम तो अच्छा कर ही नहीं सकती, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो भी हम कब कहते हैं कि हमें आता है? हम तो कहते हैं कि रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना, माने हाँ, फख्र ना करें कि मेरे जैसा कौन करेगा, हमारे जैसा काम कौन करेगा, नहीं, मान लीजिए बिल्कुल ठीक है मैं नहीं कर पा रही, बट अल्लाह मैंने करना है, अल्लाह मुझसे ठीक करा ले। जब बंदा शैतान के पहले वसवसे पे कान नहीं धरता ना, तो फिर शैतान मायूस हो जाता है। जरा सा मैं आपकी वजह से मायूस हुई, थोड़ी बददिल हुई, तो अगला स्टेप शैतान क्या होगा, दाफू, मुझे कमजोर करेगा, मैं जिस शौक से पढ़ाने इधर आऊंगी ना, मेरा दिल तोड़ देगा। लेट जाते हैं, चलो छुट्टी कर ले, फायदा तो होता कोई नहीं इनको, कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, कोई और पढ़ा लेगा, मैं ढीली होने लगूंगी। वल्लाही 90 की स्पीड पे चलती हुई गाड़ी एकदम 20 पे नहीं आती, ये आपने भी देखा, अगर करेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। हिदायत की सिराते मुस्तकीम से शैतान इतने सटल तरीके से हटाता है कि बंदा अपने आप को मजबूर समझता है, बंदा अपने आप को माजूर समझता है, बंदा अपने आप को सच्चा समझता है और कहता है मैं दूसरों का फायदा देता हूं, दिस एंड दैट, और उसके बाद फिर वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसने कभी किसी को देखा नहीं। जिंदगी में कई ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा, बेहतरीन तरीके से दीन के काम पे चल रहे थे, इन तीन में से किसी एक मरहले का शिकार हो गए, और आखिर वो ये खबर दे के चले जाते हैं कि हमारा ख्याल है कि हमारा जाना ज्यादा बेहतर है, हमारे होने से ज्यादा डिस्टर्बेंस है। ये सब शैतान के राज हैं। अल्लाह ताला ने यहां यही बताया, आप देखिए ना बात कहाँ की है, मैदाने जंग की, गजवे उहद, घर से निकले हुए, तीर तलवार पकड़े हुए, लेकिन सिर्फ एक वाकया ऐसा बन गया कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने इतनी तरबियत कर दी। और ये जो लफ्ज ना वमस्तकानू, इसका रूट क्या होगा? वही जो कान है, यकून उसे कुन फयकून, कौन से इस तकानत किसको कहते हैं? आजिज हो जाना, दुश्मन के आगे झुकना, जलील होना। हजरत हबाब बिन अरद कहते हैं कि काबे के साए में चादर लपेटे हुए अल्लाह के नबी बैठे थे, और हमने जाकर कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, अल्लाह की मदद आए, तो आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपने कहा तुम में से पहले ऐसे लोग गुजरे कि जमीन में गड़ा खोदा जाता और उसमें उनको गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता, सर के वसत में दो टुकड़े कर दिए जाते, मुसीबत का ये पहाड़ भी इनको अल्लाह के रास्ते से दूर नहीं कर सकता, और लोहे के कंघे इनके गोश्त में धंसाए जाते कि हड्डियों और पट्ठों तक उसका असर जाता, मगर अल्लाह वालों ने दीन का रास्ता नहीं छोड़ा। ये बुखारी की रिवायत है। तो याद रखिए, नबियों के साथ वाले लोगों में यही खूबी थी जिसकी वजह से नबी दीन का काम कर सके ना। तो आज सच्ची बात है वो मुश्किल है, अल्लाह ना डाले, है कोई आरे चलते दिखे, होंगी कहीं दुनिया में हमारे गुनाहों की शामत, लेकिन आमतौर पे तो मेरे आपके लिए ये मसले नहीं है, हमारी जिंदगी की छोटी सी कहानी है। मैं तो अपने आप को एक छोटे से माचिस की डिबिया में बंद करने को तैयार हो जाती हूँ कि हमारी कोशिश एक माचिस की डिबिया जितनी भी नहीं है, चंद दिया सलाइयां लेकर उस डिब्बी में लेके फिर रहे हैं, जिनके सिरों पे ईंधन है, क्या जज्बा है, आग है, हमने इस माशरे के अंधेरों को दूर करना है, हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, क्या क्या रहा है। देखिए आजकल जुनेद जमशेद साहब की जो डेथ है ना, वो एक फितना भी बनी हुई है लोगों के लिए, कोई उनको शहीद करार दे रहा है, तो कोई नाउजुबिल्ला उनको कह रहा है कि वो जल के राख हो गए, नाउजुबिल्ला। मैं एक दफा सोचती हूँ, मैंने कभी भी इस तरह से बयान तो उनके सुने नहीं, लेकिन आजकल चूंकि छोटी स्लाइड्स आती हैं, 2 मिनट का क्लिप, 3 का 4 का, तो मुझे इन 2-3 दिनों में एक आध उनका क्लिप देखने का मौका मिला कि वो दर्स भी देते थे। भाई आपको क्या लगे वो तबलीगी जमात से थे कि बरेलवी थे, कि वो देवबंदी थे, कि वो नक्शबंदी थे, कि वो सुहरावर्दी थे? अल्लाह ने पता नहीं उनका क्या मामला किया। मुझे कोई हक नहीं है उनके बारे में बोलने का, इसी तरह आपको हक नहीं है किसी के बारे में बोलने का। मुसलमान होके नमाज की बात तो करता है, दीन की दावत तो देता है, असल ये देखिए कि अपनी जिंदगी में तब्दीली कितनी बड़ी को लाता है। कहां से एक जिंदगी का रुख बदल के दूसरी तरफ आना। मैं और आप सिर्फ अपनी फिक्र करें और अपने घर वालों की कर लें। आज आप इस कोर्स को, इस क्लास को, इस कुरान की खिदमत को छोड़े, चंद दिन तो बड़ी आसूदगी के होंगे, सारे ही खुश होंगे, मुबारकबाद देंगे, और उसके बाद कोई आपका हाल भी नहीं पूछेगा। आज आप में से कोई बीमार होता है, 10 लोग आपके लिए दुआ करते हैं। आप अल्लाह ना करे घर बैठे हो, अगले को क्या पता कि आज आप बीमारी से बैठे हैं या वैसे ही आदतन बैठे हैं। दुआएं उनके लिए निकलती हैं जो लोग हकीकत में अपने वक्त पे काम करते हैं। आप ही लोगों में से एक सिस्टर हैं जो मैंने हमेशा उनको कमिटमेंट के साथ निभाव देखा है। और अगर 19-20 का भी फर्क है, तो एक दिन उनका एक मैसेज आ गया कि मेरा बच्चा बीमार है और इस वजह से मैं लेट हूं, या जो भी थी, अल्लाह जानता है कि मैं जायनमाज पे बैठी थी, मेरे दिल की गहराइयों से उस वक्त दुआ निकली कि आज इस बच्चे के लिए दुआ करनी है, क्योंकि ये रोज अपनी कमिटमेंट पे होती हैं, तो आज ये बच्चे के लिए लेट हैं या जो भी हैं, या नहीं आएंगी या जो भी है। हम में से कौन है जो ये कह सके कि हम पूरा 100%, 1000% अपने काम ठीक करेंगे? आज तक आप देखिए कि हमारे सूरह बकरा के लेसनों को और इसको मिला लें, तकरीबन हमारे 50+ लेसन हो गए हैं, मेरा गुमान है। जो कौन कह सकता है कि पूरे 50 लेसन की एक एक बात का हक अदा किया, मैंने बोलने में किया या आपने सुनने में किया? नहीं, बस रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना, इधर से गुजर जाए। लाइटें खुली रह गई, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना। हम 100 लोगों को बुला सकते थे, हमने कोशिश ही कम की, 10 आए। रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना। हमारी कोशिशों से स्कूल को 10,000 का फायदा हो सकता था, वो 200 का हुआ। रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरीना। यही आज दुहाई देते हुए दुनिया से चले जाए, बस फिर तो अल्लाह बचा लेगा। और आपके मैं तो कुछ करती नहीं, और लावारिस समझ के और यतीम समझ के दीन के काम को छोड़ के सिर्फ अपनी जात के खौल में बंद हो जाना। और कभी क्या मुसीबतें होती हैं, मुझे किसी ने ये क्यों कहा, किसी ने मुझे क्या समझा, मैं किसी के अंडर नहीं। यानी कुछ साथी हैं जिनको आज तक मैं यही बात ही नहीं समझा पड़ी कि अल्लाह के बंदो, ना आप किसी के अंडर हो, ना कोई आपके अंडर है। उनका सवाल कहते मुझे बताएं मुझे किसके अंडर काम करना पड़ेगा। भाई आपको अपने अंडर काम करना पड़ेगा, आप मुझे अपने अंडर ले ले, मुझे बताएं मैं क्या करूं। कोई किसी के अंडर काम कर नहीं सकता दीन का, या आप अपना अंडर प्रेशर होते हैं कि मैंने करना। कितनी खुशकिस्मती है हम सबके लिए, देखिए एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ने बना के दिया कि आओ बैठो अपनी खिदमत करो। मुझे तो इस प्लेटफॉर्म वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। जो जहां भी देते हैं ये मौके होते हैं, ये खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं जिनका कोई इंतजार करता है कि आप आइए और हमें कुछ दीजिए, हमारे बच्चों को आप संभाल दीजिए, हमें खाना खिला दें, हमारी सफाई कर दें, हमें कर दें। कोई जरूरी तो नहीं है कि लोगों को दर्स दें तो ही बड़ी खिदमत है, और यही अजर है। वल्लाही आज आपका मेरा यही अजर है कि हम बातिल माहौल से पलट कर दूसरी तरफ आ जाए। वरना आप बाहर चारों तरफ देखते हैं क्या हवाएं फैली हुई हैं। हर महीने की एक नई नेकी है और उसके बाद अपनी मर्जी की जिंदगी है। ये जो आखिरी बात है ना कि बातिल के मुकाबले में कमजोर नहीं होते, इससे भी यही मुराद है कि सोसाइटी के रंग ढंग को नहीं अपनाते। आज हम अपने मुआशरे के हाथों कमजोर हुए हैं, तो वक्त के आगे, बातिल के आगे मुकाबला करने से क्या मुराद है? नफ्स कमजोर नहीं होता। खानदान, बिरादरी, दोस्तें, सहेलियों का प्रेशर आपको आपकी हिम्मत से पीछे नहीं करता। इनके इरादे नरम नहीं होते, वो झुकते नहीं, ना हक को छोड़कर बातिल पे समझौते करते हैं। और फिर सब्रो सुबात आ जाता है। ये दुआ किया करें कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, और हमारे कदमों को जमा दे और हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। किन काफिरों के मुकाबले में आज हम सब खड़े हैं? वहां तो अबू सुफियान और उनके लश्कर थे ना। आज मैं और आप कुरान की तालीम ले देकर किस काफिर कौम के आगे खड़े हैं? सारा कुफर का निजाम है जिसके आगे आप एक ढाल बनना चाह रहे हैं। बातें करके दुनिया से चले गए बहुत सारे। ये रास्ते की सोबते नहीं बर्दाश्त हुई, वरना तो आपको क्या पता आज से 50 साल पहले इधर बच्चों के स्कूल बन चुके होते, इधर इस्लामिक बैंक बन चुके होते, पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम होता अगर ख्वाहिशों पे आ जाता। ख्वाहिशें आज भी बहुत करते हैं, 1.5 बिलियन में से 1 बिलियन तो जरूर करते होंगे, बट सब बे तकदा मना नहीं होता, कदम नहीं जमते। सूरत बकरा के आखिर में तालूत और उनके साथियों की दुआ थी, फंसुरना लिल कौमिल काफिरीन। यहां देख लीजिए नबियों के साथियों की दुआ है, हुआ क्या, फाताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया वहुस्न सवाबिल आखिरा। तो इनको अल्लाह ने दुनिया का सवाब भी अता किया और आखिरत का सवाब तो बड़ा ही उम्दा है। दुनिया की फतुहात मिली, सरबुलंदी मिली, दुनिया में इज्जत भी मिली, और वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है। अपने ऊपर लेकर सोचें तो ये सारी बातें इंसान को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती हैं। तो जितनी बातें, इसका खुलासा क्या निकला कि नबी सल्लम की वफात को बहाना ना बनाओ अपने दीन से फिसलने का। गर्मी सर्दी हालात की जो भी है उससे ऊपर उठकर काम करो तो साबिर कहलाओगे। सवाल पैदा होता है कि साबिर कौन है? नंबर 1, साबिर वो है जो अल्लाह की मोहब्बत के एहसास में उस रास्ते में आने वाली मुश्किलात के बावजूद अपने काम पे जमा रहे, अंदर की तलखियां खत्म हो जाएं जिसकी वो साबिर है, खुद पे रहम के जज्बे खत्म हो जाएं ये साबिर है। और यहां से एक आखिरी बात ये भी नोट करें कि दुआएं बड़ी जरूरी होती हैं। जब इंसान कोशिशों से कोई चीज ना हासिल कर सके तो वो दुआओं से ले लें। साहबे किराम की ये खूबी थी कि वो अल्लाह से मांगते थे। और जो जुनूब है ना, ये छोटे गुना भी और बड़े मिक्सअप भी होते हैं, और इसराफ जो है ना ज्यादती हैं, यहां तक कि कबीरा गुनाहों तक बंदा पहुंच जाता है। बास मरतबा किसी नेक काम में लगने से दूसरे नेक काम छूटते हैं, ये भी होता है, हदूद से आगे बढ़ जाने की सूरत बन जाती है, तो उसको भी इसराफ कहा गया। बस जब आप दीन के तकाजे पूरे कर रहे हैं, शौहर के नहीं कर पा रहे, ये भी इसराफ बन जाता है। बच्चों का हक मारा जाता है बास दफा, इसराफ है कोई बात नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है अबू मूसा अशरी से, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हतीयती व जहली व इसराफी फी अमरी व मा अंता अलमु बिही मिन्नी। ए अल्लाह, मेरी खताओं को जहल से यानी जो जहालत से हुए, या इसराफ यानी ज्यादती मेरे कामों में हुई, जिसको तू मेरी तरफ से जानता है उनको माफ कर दे। तो दुआएं मांगते जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सारी बातें ठीक होंगी। और इसे पता चलता है कि मोमिन बाशऊर होता है, उसका शऊर इतना जिंदा होता है। अच्छा, मजे की बात है कि यहां कामयाबी नहीं मांगी, इस्तकामत मांगी है, यानी कुफर और इस्लाम की जंग में हम खड़े ही रहे चाहे फतह हो या शिकस्त हो। यही आपको मुझे ओहद की फतह और शिकस्त से सिखाया जा रहा है कि मोमिन सिर्फ मैदान जंग में जीतने के लिए भी नहीं जाता, वो तो हक का परचम बुलंद करने के लिए जाता है। उसको पता होता है ये क्या करना है। अगली आयतों में फिर जो प्रोपेगंडा था ना इस बारे में, उसका तذکرہ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दुकुम अला आक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। ऐ ईमान वालों, अगर तुम इन लोगों का कहना मानोगे जिन्होंने कुफर की रविश अख्तियार की, तो वो तुम्हें एड़ियों के बल वापस ले जाएंगे। फिर क्या होगा, फतन कलीबु खासिरीन, फिर तुम बिल्कुल नामुराद हो गए। ये किन की बात है, वापिस आ जाए मैदान जंग में। कौन थे काफिर वहां? अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर। यानी कुछ लोगों ने वहां जाके शुरू कर दी थी बातें कि अल्लाह के नबी तो अब दुनिया से चले गए, तो तुम अबू सुफियान की पनाह में आ जाओ। ये बात है इधर इशारतन कि अब दोबारा पुरानी दोस्तियां कायम कर रहे हो, फिर मोहब्बतें। लिखिए इसकी तफासीर में लिखा, अल्लज़ीना कफर उसे मुराद मुशरिकीन अरब, अबू सुफियान और उनके साथी। दूसरी इसकी तफसीर है यहूद और नसारा, और हजरत अली कहते हैं इससे मुराद मुनाफिकीन है, जिन्होंने उहद की शिकस्त पर मुसलमानों से कहा आओ अपने बाप दादा के दीन पर वापस चलो। और यरुद्दूकुम अला अकाबिकुम से क्या मुराद है, तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल लौटा देंगे, यानी जो काम तुम पहले करते थे वही करवाएंगे, और वो काम कुफर और शिर्क का काम था, यानी पलटो और वापस जाके वही काम करने लगो। सवाल पैदा होता है कि इस प्रोपेगंडे का फायदा क्या हुआ, मकसद क्या था काफिरों का इन बातों को करना का। तुम लिखिएगा इसके चंद पॉइंट्स। नंबर एक, मुसलमानों की हिम्मतें तोड़ना। नबी का साथ देने के बुरे इंजाम से डराना। नंबर तीन, इस्लामी सफों को तोड़ना, इत्तेहाद को पामाल करना। नंबर तीन, उनके दिलों को मुतजलजल करना। देखिए, नेकी का काम भी पूरे दिल से ही होता है, अधूरे दिल से काम नहीं होता ना। तो वो चाहते थे ऐसी बातें करें जो अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, उनके इरादे मुतजलजल हो जाए। पांचवा, इसका मकसद था कि इस्लामी क़यादत के खिलाफ बदएतमादी, यानी लीडरशिप के ऊपर एतमाद उठ जाए। फिर छठी इसकी बात क्या थी कि अपने से बड़ी कुव्वत के साथ टकराने की पॉलिसी के फायदों को मशकूक बनाना, यानी कि कुफार इतने ज्यादा हैं, अब मुसलमान उनसे लड़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। फिर इसी तरह एक और इसका मकसद है इनफरादी दर्द और गम को भरना, यानी सहाबा को जातियात पे लाना है, देखो तुम्हारा बाप मर गया, किसी का भाई चला गया। फिर इसी तरह से काफिरों से मुसालेहत पर आमादा करना, ये भी एक मकसद था। और इस्लाम को कुफर के आगे झुकने पर आमादा करना, और इसी से मिलते हुए और बहुत सारे मकासद थे। अल्लाह ताला कहते हैं तुम भी पलट जाओगे। और किनको कहा जा रहा है जो नबी के दौर के लोग हैं, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या कहो अगली आयत में, बहुत खूबसूरत बात है, बलिल्लाहु मौलाकुम, हकीकत यह कि तुम्हारा मौला तो अल्लाह है, वहुवा खैरुन नासिरीन, और वही सबसे अच्छा मददगार है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए तो मैदान जंग का पानसा पलटा गया, तो अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे ना, उन्होंने ये चेक करना चाहा कि नबी सल्लम जिंदा हैं कि नहीं। मैदान उहद में खड़े हैं, हल फी कु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अल्लाह के नबी और अबू बकर सब सुन रहे थे लेकिन खामोश रहे। तो खुश हुआ, कहने का जय हुबल, जय हुबल, ऐसे जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अपने हुबल को उसने बड़ा कहा। फिर कहने लगा हल फी कु अबू बकरिन, आपने इशारा किया चुप, तो कहने का जय हुबल, यानी मोहम्मद सल्लम भी फौत हुए और अबू बकर भी हुए, हल फी कु उमर, तीनों पे खामोश रहे। जो ही उसने ये कहा कि जय हुबल और अपने खुदा की बुराई की, तो उस पे अल्लाह के नबी ने कहा तुम इसको जवाब दो। कहने लगा लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, ए मुसलमानों हमारी उज्जा देवी है तुम्हारी उज्जा नहीं। अब जब तौहीद पे चोट पड़ी ना, तो अल्लाह के नबी ने कहा अब इसको जवाब दो कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, उसका ही जिक्र है ना तुम्हें, अल्लाह हमारा मौला, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। यानी आप अपनी जात पे थे तो चुप रहे, लेकिन जब उसने अल्लाह की जात पे कुछ बात कही तो उसको पीछे कर दिया। क्या पता चलता है कि कुफर का सहारा ऐसी चीजों को अपने कुफर के ऊपर जमाने के लिए होता है, लेकिन मुसलमानों को मुसलमानों के को और जमाने के लिए होता है। सवाल पैदा होता है गजवे उहद जैसे वाकयात जिंदगी में क्यों आते हैं। हमारी आज भी उहद है, मैंने कल आपको डिटेल से समझाया था कि हम सबकी उहद आती है, कोई बिदाने बदर में किसी की आती है तो किसी के अमली मैदान में आती है। तो क्यों आते हैं, वजह क्या होती है ऐसे वाकयात की। नंबर एक, अल्लाह पर एतमाद करने वाले कौन है ये जाहिर हो जाए, फिसलने वाले कौन है उनका पता लग जाए, मुखालिफों की बातों से मोमिन मुतासिर ना हो, वक्ती तकलीफ से घबराए नहीं और हर हाल में साबित कदम रहे। और कितनी खुशी होती है जब बंदा कहता है कि अल्लाह मौलाना, अल्लाह मेरा मौला है, बल अल्लाह मौलाकुम। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपनी विलायत से ना निकाले, क्योंकि इसके बगैर हम सिर्फ ठोकरें खाएंगे, सांस भी नहीं निकलेगी हमारी जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। सूरत अनफाल आयत 40 में भी आप पढ़ेंगे, वइन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर, कि अगर वो मुंह फेरें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा मददगार है।
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.